हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। कुछ देर बाद सुनैना चेंज करके वॉशरूम से बाहर निकली और अपने बैग में लाया हुआ सारा सामान चेक करने लगी। वैसे उसे विराज और अवंतिका पर विश्वास तो था कि वे उसके बैग का कोई भी सामान इधर उधर नहीं करेंगे, और ऐसा कोई कीमती सामान भी नहीं था उसके बैग में। लेकिन फिर भी अपने सारे जरूरी डॉक्यूमेंट्स और मार्कशीट चेक करके वो तसल्ली से रख लेना चाहती थी। उसमें वो सारा सामान था जो सुनैना अपने घर से लेकर आई थी, इसलिए वो सब देखने के बाद सुनैना ने राहत की सांस ली और उसमें से अपने कपड़े और सारा सामान निकालकर कमरे की अलमारी में रखने लगी। अलमारी ज्यादातर आदित्य के सामान और उसके कपड़ों से भरी हुई थी, लेकिन फिर भी सुनैना का सामान इतना ज्यादा नहीं था, इसलिए आराम से उस अलमारी में शिफ्ट हो गया। उसके साथ ही वो सारा सामान पहले से ही सुनैना के लिए उस अलमारी में रखा था जो आदित्य शादी के अगले दिन ही लेकर आया था। कुछ कपड़े, हील्स, मेकअप, चूड़ियाँ और बाकी कुछ जरूरत का सामान। लेकिन सुनैना ने सिर्फ अपनी जरूरत के हिसाब से उसमें से अब तक दो या तीन जोड़ी कपड़े ही बदल बदल कर पहने थे। बाकी और कोई भी सामान उसने उसमें से इस्तेमाल नहीं किया था। आदित्य के साथ उसकी शादी काफी अलग और अजीब तरह से हुई थी, जिसे वो पूरी तरह से अपना भी नहीं पा रही थी और पूरी तरह से ठुकरा भी नहीं पा रही थी। इसलिए वो उसकी लाई चीजों, उसके घर, सामान, कार और पैसों पर अपना हक भी नहीं जता पा रही थी, या शायद वो जताना ही नहीं चाहती थी, क्योंकि आदित्य अभी तक सुनैना पर अपना कोई हक नहीं जता रहा था। हक जताना तो दूर, वो तो उससे सीधे मुंह बात तक नहीं करता था, बस कभी कभार थोड़ी बहुत, वो भी जब नशे में होता था, ज्यादातर तभी कुछ न कुछ बोल देता था। लेकिन उसके अलावा तो पूरी तरह अनजान थे वे दोनों अभी तक एक दूसरे से, या फिर शायद सिर्फ सुनैना ही अनजान थी आदित्य से, क्योंकि आदित्य की आंखों में तो अपने लिए उसे बहुत कुछ नजर आता था। सुनैना अलमारी में रखे आदित्य के सामान के साथ ही अपना सामान भी रखते हुए ये सब कुछ सोचने लगी थी। उसके मन में बार बार ना चाहते हुए भी आदित्य और उससे जुड़ी बातों का ख्याल आ ही जाता था, क्योंकि शायद अब वो खुद भी आदित्य से जुड़ चुकी थी, लेकिन बस खुद ही इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थी। हाँ, क्या है ये सब, दिमाग से निकलता क्यों नहीं है ये मेरे, और भी तो कितना कुछ इम्पोर्टेंट है मेरी लाइफ में मेरे लिए, तो फिर क्यों बार बार ना चाहते हुए भी मैं इसके बारे में ही सोचने लगती हूँ। शायद बहुत सारे ऐसे सवाल और काफी सारे छिपे हुए राज हैं जिनके बारे में सिर्फ तुम ही मुझे बता सकते हो, इसलिए ऐसा होता है। आज मैं तुमसे इन सब चीजों के बारे में बात करके ही रहूंगी आदित्य, सुनैना ने जैसे मन ही मन खुद को अपने मन में चल रही सारी बातों का एक हल निकालने का रास्ता सुझाते हुए कहा। और ये सब सोचते हुए सुनैना वापस बेड पर आकर बैठ गई और आदित्य के बारे में सोचने से ध्यान भटकाने की कोशिश करने के लिए अपने बैग में बचा हुआ सामान निकालकर देखने लगी। उस बचे हुए सामान में दो फोटो फ्रेम भी थे, जिनमें एक सेम वही फोटो थी नैना और सुनैना के साथ में, जो कि नैना ने भी अपने बेड के सिरहाने पर लगाई हुई थी, और दूसरी तस्वीर थी सुनैना की माँ की। काफी पुरानी सी तस्वीर थी वो, क्योंकि सुनैना की माँ को गुजरे हुए लगभग 15 साल हो चुके थे, लेकिन उस तस्वीर वाली औरत को देखकर कोई भी कह सकता था कि वही सुनैना की माँ की तस्वीर है, क्योंकि उनकी शक्ल सुनैना में बहुत ही ज्यादा मिलती थी, और सबसे ज्यादा तो उनकी बड़ी बड़ी वो सुंदर काली गहरी आँखें, जो कि नैना और सुनैना दोनों को ही अपनी माँ से विरासत में मिली थी। लेकिन नैना की आँखों का रंग अलग था, इसलिए सुनैना की आँखें अपनी माँ की तस्वीर में अपनी आँखों से ज्यादा मेल खाती थीं। सुनैना ने अपनी माँ की तस्वीर देखी और फिर कुछ सोचकर एक ठंडी सांस भरते हुए उस फोटो फ्रेम को बेड के साइड में बने ड्रॉअर में रख दिया और फिर नैना की तस्वीर लेकर उसे कुछ देर देखने लगी और फिर बोली, अभी तक कॉल बैक भी नहीं किया दीने, अभी तक फ्री नहीं हुई होंगी क्या वो अपने वर्क से? मैं ही फिर से कॉल कर लूं क्या, या फिर वो खुद ही करेंगे? जब देखेंगे तो रहने देती हूँ। ये बोलते हुए सुनैना ने अपना मोबाइल उठाया तो उसमें कुछ मैसेजेस पड़े थे। सुनैना उन्हें चेक करने लगी। एक मैसेज विराज का था, इट वॉज वेरी नाइस मीटिंग एंड टॉकिंग टू यू सुनैना, थैंक्स। अवंतिका की तबीयत अब कैसी है? विराज का मैसेज पढ़कर सुनैना को समझ नहीं आया कि वो उसे क्या रिप्लाई करे, तो उसने थैंक यू बोलते हुए अवंतिका की तबीयत के बारे में पूछ लिया और फिर दूसरे मैसेजेस चेक करने लगी, जो कि उसकी फ्रेंड ज्योति के थे। कॉलेज में मिलकर उसने सुनैना को नोट्स और बाकी जो भी कोर्स सुनैना का अब तक मिस हुआ था वो सब भेजने को कहा था, तो वो वही सब था ज्यादातर। सुनैना जल्दी जल्दी ज्योति के सारे मैसेजेस चेक करने लगी और फिर उसे भी उसने रिप्लाई में थैंक यू बोला, ये सारी चीजें भेजकर उसकी हेल्प करने के लिए। सारांश, सहगल हाउस, विराज और अवंतिका का घर। कॉलेज से आने के बाद आज भी विराज काफी खुश नजर आ रहा था, क्योंकि कॉलेज में आज उसका ज्यादातर टाइम सुनैना के साथ बीता था और उसे सच में सुनैना की कंपनी काफी पसंद आई थी। उसे सुनैना हमेशा से ही पसंद थी, लेकिन सुनैना इतनी इंट्रोवर्ट और सिर्फ अपने आप और अपनी पढ़ाई से मतलब रखने वाली लड़की थी, अवंतिका से भी वो कम ही मिलती थी। इसलिए विराज को कभी हिम्मत नहीं हुई उससे ज्यादा बातचीत करने की, लेकिन आज पहली बार उसके साथ इतनी देर बात करके उसे सुनैना के बारे में ज्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा बहुत जानने का मौका तो मिला ही था। और वही सारी बातें सोचते हुए उसने सुनैना को मैसेज भी कर दिया था। और सुनैना के बारे में और जानने की ख्वाहिश मन में लिए वो कुछ चहकता हुआ और चेहरे पर एक स्माइल के साथ अवंतिका के कमरे में आया। तो अवंतिका इस वक्त अपने बेड पर लेटी हुई मोबाइल चला रही थी और उसका पूरा कमरा हमेशा की तरह ही बिखरा हुआ पड़ा था। विराज ने अवंतिका के इस तरह बिखरे हुए कमरे को देखकर टेढ़ा सा मुंह बनाया और फिर ध्यान से जमीन पर बिखरे सामान पर पैर रखने से बचता हुआ अवंतिका के पास उसके बेड तक आया और उसके पास बैठते हुए बड़े ही प्यार से उससे पूछते हुए बोला, कैसी है अब तेरी तबीयत? अभी पूरी तरह से तो ठीक नहीं है, बट पहले से बेटर है। लेकिन भाई आप बताओ क्या बात है, आप बड़े खुश लग रहे हो आज। अरे नहीं, कुछ तो नहीं, कुछ नहीं हुआ, मैं तो खुश हमेशा ही रहता हूँ, तू तो जानती ही है मुझे। अवंतिका की बात सुनकर विराज अपना चेहरा नॉर्मल करने की कोशिश करते हुए उसे सफाई देते हुए बोला, हाँ जानती तो हूँ बहुत अच्छे से, और बेवजह तो इतना खुश कोई भी नहीं रहता, फिर चाहे वो मेरे हॉट एंड हैपनिंग से भाई ही क्यों ना हो। अब बताइए क्या बात है? अवंतिका ने फिर से विराज की तरफ उसी तरह शक भरी निगाहों से देखते हुए उससे पूछा, कुछ नहीं बस, आज तू सारा दिन मेरे साथ नहीं थी ना कॉलेज में, तो मेरा सिर नहीं दर्द कर रहा है और किसी ने पूरा दिन तंग भी नहीं किया मुझे अपनी बातों से, बस इसलिए इतना खुश हूँ। अवंतिका के बार बार इस तरह से पूछने पर विराज ने भी जानबूझकर उसे चिढ़ाने वाली बात इस तरह से बोली कि अवंतिका चिढ़ जाए, और वही हुआ भी। विराज की ये बात सुनकर अवंतिका का सच में मुंह बन गया और वो गुस्से में मुंह फुलाकर अपना चेहरा दूसरी तरफ करती हुई बोली, ठीक है तो फिर रहिए खुश मेरे बिना ही, मुझे भी आपसे कोई बात नहीं करनी। अवंतिका के इस तरह से मुंह फुलाकर ये बात बोलने पर विराज उसकी तरफ देखकर मुस्कुराने लगता है क्रमशः।